ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣ ಹೀನ ಜನೋ ಜಗನ್ಯ. ದಿವ್ಯ ಸಜ್ಜನೋ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಜಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಲಿಖಿತ ಆರ್ಯೋದ್ದೇಶ್ಯ ರತ್ನಮಾಲಾ, ಜಿಸ್ಮೇ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ವಿಷಯೋ ಪರ ಉನ್ಕಿ ಜೊ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಿ ಜೊ ಅಪ್ನಾ ವಿಚಾರ ಹೈ, ಪ್ರಕಟ ಹೈ, ಉಸ್ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಹಮ್ನೆ ಪಹಲೆ ಶುರು ಮೇ ಚುನಾ ಥಾ, ಧರ್ಮ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಧರ್ಮ ಕಿ ಅಪ್ನಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಪರಿಭಾಷಾ ದೇತೆ ಹೈ, ಇಸ್ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಈಶ್ವರ ಕಿ ಆಜ್ಞಾ ಕೆ ಪಾಲನ್ ಯಥಾವತ್ ಪಾಲನ್ ಹೋ, ಅರ್ ಪಕ್ಷಪಾತ ರಹಿತ ನ್ಯಾಯ ಸರ್ವಹಿತ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಜೋ ಕಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ಪ್ರಮಾಣೋ ಸೇ ಭಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೋ, ವೇದ ಆದಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಹೋ, ವಹಿ ಮನುಷ್ಯೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಧರ್ಮ ಹೈ ಔರ್ ಉಸಿ ಕೋ ಧರ್ಮ ಕಹತೆ ಹೈ. ಪಿಛಲೆ ಬಾರ್ ಹಮ್ನೆ ಇಸ್ಕಿ ಥೋಡಿ ಸಿ ಚರ್ಚಾ ಕಿ ಥಿ. ಧರ್ಮ ಕಾ ಜೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೈ, ಧರ್ಮ ಕಾ ಜೋ ಎಟಿಮೋಲಜಿ ಹೈ, ವೋ ಹೈ ಕಿ ಧಾರಣಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾಹುರ್ ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯತಿ ಪ್ರಜಾ. ಮಹಾಭಾರತ ಕೆ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಮೇ ಆತಾ ಹೈ, ಜೋ ವ್ಯವಹಾರ ಜೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಹಮಾರಾ ಜೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಸ್ಟೇನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಹಮೇ ಹಮಾರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋ, ಹಮಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋ, ಓವರಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೋ, ಉಸೇ ಹಿ ಧರ್ಮ ಕಹತೆ ಹೈ. ಹಮಾರಾ ಜೋ ವ್ಯವಹಾರ ಜೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಖತರ್ನಾಕ್ ಹೈ ವೋ ಅಧರ್ಮ ಹೈ, ಜೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೋ ಸಸ್ಟೇನ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಧರ್ಮ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೈ. ಔರ್ ಜಬ್ ಹಮೇ ಕಭಿ ಡೌಟ್ ಹೋ ಕಿ ಮೇ ಜೋ ಕರ್ ರಹಾ ಹೂ ವೋ ಠೀಕ್ ಹೈ ಕಿ ಗಲತ್ ಹೈ, ವೋ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹೈ ಕಿ ಅಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹೈ, ತೋ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೈ ಕಿ ಅಗರ್ ವೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಜೊ ಕುಚ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಹೈ ಉಸ್ಕೊ ಬನ್ನೇ ರಖನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಸಂಸಾರ ಹೈ, ಯೇ ಧರ್ತಿ ಹೈ, ಯೇ ದೇಶ ಹೈ, ಹಮಾರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹೈ, ಹಮ ಖುದ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಇಸ್ಕೋ ಸಸ್ಟೇನ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಹೈ ತೋ ವೋ ಧರ್ಮ ಹೈ, ಅಗರ್ ಇಸ್ಕೆ ಅಪೋಜಿಟ್ ಹೈ ತೋ ವೋ ಅಧರ್ಮ ಹೈ. ಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೈ. ಮಹರ್ಷಿ ಕಣಾದ್ ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ್ ಮೇ ಲಿಖತೆ ಹೈ, ವೈಶೇಷಿಕ ದರ್ಶನ್ ಏಕ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೈ, ಹಮಾರೇ ಹಿಂದೂ ದರ್ಶನ್ ಯಾ ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಜೊ ಛೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೈ ಉನ್ಮೇ ಸೇ ಏಕ್ ಹೈ. ಉಸ್ಕೆ ಜೊ ಫೌಂಡರ್ ಆಥರ್ ಹೈ ವೋ ಹೈ ಕಣಾದ್ ರಿಷಿ. ತೋ ವೋ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಧರ್ಮ ಕಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇ, ಯಥೋಭ್ಯುದಯ ನಿಶ್ರೇಯಸು ಸಿದ್ಧೀರ್ ಸಧರ್ಮ. ಜಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಜಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಸ್ ಜೀವನ್ ಮೇ ಹರ್ ತರಹ ಕೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಕೋ, ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಚಾರೋ ತರಫ್ ಸೇ ಉನ್ನತಿ ಕೋ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೋ, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ಆರ್ ಇವನ್ ಮರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ ನಿಶ್ರೇಯಸ್ ಕೋ, ಪರಮ ಆನಂದ ಕೋ, ಉಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಬ್ಲೀಸ್ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೈ, ವೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಹಮೇಶಾ ಧ್ಯಾನ್ ರಖಿಯೆ, ಹಮಾರೇ ಕಿಸಿ ಭಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಧರ್ಮ ಕಾ ಕೋಯ್ ಭಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಧರ್ಮ ಅಗರ್ ಛೋಟಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಕೋಯ್ ಕಹೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇ ಹಮಾರಾ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿ ಹಮಾರಾ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಔರ್ ಮಹರ್ಷಿ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮೇ ಜೈಸಾ ಕಿ ಹಮ್ನೆ ಪಿಛಲೆ ಬಾರ್ ಚರ್ಚಾ ಕಿ ಥಿ, ಕೋಯ್ ಭಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಯಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಜೋ ಸಸ್ಟೇನರ್ ಹೈ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಇಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೋ ಧರ್ಮ ಹೈ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹಮಾರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇ ಸೇ ಐಸೆ ದಸ್ ವ್ಯವಹಾರ ಕೋ ಚುನ್ತೆ ಹೈ, ಕಹತೆ ಯೇ ದಸ್ ಜೊ ಹೈ ಧರ್ಮ ಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೈ, ಲಕ್ಷಣ ಮತಲಬ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೈ, ಯೇ ಧರ್ಮ ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೈ, ಜೊ ಕಿ ಆಪ್ಕೆ ಅಗರ್ ಯೇ ದಸ್ ಮೇ ಸೇ ದಸ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ ತೋ ಆಪ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಇನ್ಮೇ ಸೇ ಕುಚ್ ಹೈ ತೋ ಆಪ್ ಥೋಡಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಹೀ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ಧೃತಿ, ಧೀರಜ್ ರಖನಾ, ಪೇಸೆನ್ಸ್ ರಖನಾ, ಸುಖ ಮೇ ದುಃಖ ಮೇ ಅಚ್ಛೆ ಮೇ ಬುರೆ ಮೇ ಹರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೇ ತನಾವ್ ಮೇ ಪರೇಶಾನಿ ಮೇ ಅಪ್ನೇ ಆಪ್ ಕೋ ಬನಾಯ್ ರಖನಾ, ಯೇ ಭಿ ಹಮ್ನೆ ಪಹಲೆ ಚರ್ಚಾ ಕಿ ಹೈ. छोटी सी चीज लगती है, पर आप सोच के देखिए, अगर आप 24 घंटे के लिए आपके फैमिली में हर मेंबर इम्पेशेंट हो जाए, किसी के अंदर कोई धीरज ना रहे, कोई किसी की किसी भी छोटी छोटी गलतियों को भी माफ करने को तैयार ना हो, तो हमारी फैमिली कितना मेसअप हो जाएगा, कितना बिगड़ जाएगा। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस चीज से कोई सिस्टम बिगड़ता हो, सिस्टम जो मैन मेड सिस्टम नहीं, जो नेचुरल सिस्टम है, मैन मेड सिस्टम तो अपनी सेल्फिश रीजन के कारण बनाया हुआ है, अगर वो उसको बिगड़ता हो तो फिर वो धर्म नहीं हो सकता। इसी तरह क्षमा करना, दूसरों को माफ करना, दमा इंद्रिय अपने मन को कंट्रोल करना, अस्ते या चोरी का भाव न रखना, शौच सफाई रखना, शरीर से भी मन से भी, ये भी हमने चर्चा की थी, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। छोटी सी चीज देखिए कि आपके शरीर, आप 15 दिन से ना नहाए, हमारे कपड़े एक हफ्ते तक पहनते रहते हैं, ना नहाए बदबू आने लगता है, आदमी बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि सफाई न रखना हमारे एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए को नष्ट करने के लिए कारण है, इसीलिए सफाई करना, सफाई रखना धर्म है। और सफाई सिर्फ शरीर से नहीं होता है, मन से भी होता है। आजकल जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते जाते हैं तो हम फिजिकली बहुत साफ सुथरा रहते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते कि एक सफाई मन की भी होती है। हमारी पढ़ाई लिखाई के साथ हमारा सिविलाइजेशन बढ़ता है, सिविलिटी बढ़ती है, और सिविलिटी सिर्फ फिजिकल होता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, साफ शरीर रखते हैं, साफ घर रखते हैं, साफ नेबरहुड रखते हैं, मन में बहुत कम बदलाव आ पाता है। मन में तो वही इंसानी दोष सबके अंदर बराबर होता है, जेलेसी, एंगर, एनिमिटी, ग्रीड, तो वो सब चीजें एक अनपढ़ आदमी में भी होता है, पढ़े लिखे आदमी में भी होता है, गरीबी में भी होता है, धनी में भी होता है। फर्क ये तो ये होता है कि गरीब आदमी गंदा पहनता है, पढ़ा लिखा पैसे वाला आदमी साफ सुथरा पहनता है। और उसका रिजल्ट क्या है, आपकी बाहरी सफाई का फायदा आपको मिलता है कि आप बीमार कम पड़ते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं, उसका फायदा आपको मिलता है। जो नहीं रहता है उसको उसका नुकसान उठाना पड़ता है, वो ज्यादा बीमार पड़ता है, वो ज्यादा अनहेल्दी होता है। पर मन को साफ ना रखने का नुकसान सबको मिलता है, हमारे अंदर स्ट्रेस, टेंशन, दुख, परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो शौच मन की हो या शरीर की हो, सफाई रखना ये भी पार्ट ऑफ धर्म है। इसी तरह इंद्रिय निग्रह, अपनी सेंसेस को कंट्रोल में रखना, क्यों, सेंसेस का स्वभाव है, बेलगाम घोड़े घोड़ों की तरह होते हैं, घोड़ों के अंदर आप लगाम नहीं लगाएं, आप रथ में बांधते हैं, अपनी अपनी गाड़ी में, अपनी चैरियट में, जहां भी आप घोड़े को यूज करते हैं, पर अगर उसमें आप लगाम यूज नहीं करते हैं, तो घोड़ा आपको कभी भी अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा, वो इधर उधर भागेगा, जहां उसको हरे घास दिखे, जहां उसको कुछ अपने पसंद की चीजें दिखे भागेगा। इंद्रियों का यही स्वभाव है, आप बीमार हो, आपका मन खराब है, शरीर खराब है, इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीभ को मीठा पसंद है, मीठा देखते ही, मीठे का नाम सुनते ही उसका मन करेगा खाने के लिए, वो ये नहीं देखेगा कि आप बीमार हो। पर जब आप अपनी जीभ को कंट्रोल करते हैं, आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए रास्ता पैदा करते हैं, आप ज्यादा दिन जीने के लिए जगह बनाते हैं। अगर कंट्रोल नहीं करते कि मैं कैसे भी हूं, बीमार हूं, कुछ भी हूं, मेरा जीभ चाह रहा है कि मैं खाऊं, तो आप खाने लगते, आपको पता है आपके साथ क्या होता है।
इसी तरह आपके आंख कान नाक अगर आप सबको खुला छोड़ देंगे, जो मर्जी करो, जैसी कान को इच्छा सुनने की सुने, जैसे नाक को इच्छा सूंघने की 24 घंटे सूंघे, हर किसी को बड़े खुशबू सूंघने की इच्छा है तो हम आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, गाड़ी में, घर में, कपड़े में, तो 24 घंटे यूज करते हैं, उनको स्मेलिंग शक्ति भी कम होती जाती है और अंदर 50 बीमारियां लेकर जाती हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी आदत है कि बस अच्छे सूंघने की है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना ये मेरे एग्जिस्टेंस के लिए, मुझे सस्टेन करने के लिए जरूरी है, इसीलिए इंद्रिय निग्रह धर्म है। जो जितना ज्यादा निग्रह करेगा उतना ज्यादा शांति से सुख से रह सकता है। धी, धी का अर्थ होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि। वैसे तो पैदा इसी सबके पास बुद्धि है, पशुओं के पास भी अपनी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। हम जब पैदा होते हैं हमारी बुद्धि भी पशुओं की तरह ही होती है, थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेट करना हम जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पर हम उसको फिर नर्चर करते हैं, हम उसको पॉलिश करते हैं, पढ़ाई से, लिखाई से, समझदारी से, सोशल बिहेवियर से, लोगों से सीखते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से हम अपने इंटेलेक्ट को और डेवलप करते हैं। इंटेलेक्ट का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना, अलग अलग करना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है। जो सही आज है हो सकता है वो कल को सही ना हो, जो चीजें दिन में ठीक है वो रात को ठीक नहीं हो सकता है, जो चीजें रात को ठीक है वो दिन में ठीक नहीं हो सकता है, ये डिस्क्रिमिनेट करना। रात को सोना अच्छी चीज है, ना सोना आपको बीमार करता है, पर आप कहेंगे सोना क्योंकि अच्छी चीज है इसलिए मैं दिन में भी सोऊंगा, तो नुकसान करता है। ये समझ रखना कि बुद्धि है और इस बुद्धि को डेवलप करना पड़ता है। डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन है, विद्या, लर्निंग, पढ़ना। पढ़ना भी जैसे जैसे व्यक्ति अनपढ़ था पिछले, आप देखिए 1000 साल पहले 500 साल पहले जब लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जिंदगी, उनकी जो लाइफ स्पैन है कितना होता था? 40 साल, 50 साल, 30 साल मैक्सिमम। भारत में हैजा की बीमारी होती थी, डायरिया, तो पूरे के पूरे गांव लाखों में मरना शुरू होते थे, प्लेग में, छोटी छोटी बीमारियों में भी लाखों की मरते थे लोग। लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़ी, समझदारी बढ़ी, साइंस डेवलप हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, हमारे अपने कॉमन सेंस भी डेवलप हुआ, तो अब बड़े बड़े बीमारियों में भी लाखों लोगों को होता है तो भी परसेंटेज बहुत कम है कंपैरिजन 100 साल 200 साल 500 साल पहले। जैसी जैसी हमारी लर्निंग बढ़ती है ऐसी ऐसी हमारी समझदारी भी बढ़ती है, ज्यादा दिन जीवित रहने के लिए। जैसे ह्यूमन सोसाइटी पढ़ा लिखा बना, उसका लाइफ स्पैन भी बढ़ने लगा। इसीलिए विद्या जरूरी, विद्या भी पार्ट ऑफ धर्म है। विद्या मतलब लर्निंग, सीखना, सीखते रहो। तैतिरे उपनिषद कहता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। शिष्य का जब ग्रेजुएशन हो जाता है, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, स्कूल से कॉलेज से नहीं, मतलब लास्ट पढ़ाई, जो भी उसकी हाईएस्ट पढ़ाई है, जब वो पूरी हो जाती है, उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। जैसे आप शादी का संस्कार करते हो, जनेऊ के संस्कार करते हो, अंत्येष्टि संस्कार करते हो, नामकरण संस्कार करते हो, आजकल ग्रेजुएशन लोग यहां करते हैं, पर वो वेस्टर्न वे में करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो जो ट्रेडिशनल था वो एक संस्कार था, समावर्तन संस्कार। उसमें गुरु शिष्य को, जो टीचर है, ये यूनिवर्सिटी या स्कूल में होता है जहां पढ़ाया जाता है, गुरु करता है, वो उसको बोलता था, यहां से जब तुम घर जाओगे तुम्हें दो चार चीजों को ध्यान रखना है, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उनमें से एक चीज था स्वाध्याय या प्रवचनाभ्याम, रेगुलर स्टडी, रोज पढ़ना, और जो पढ़ा उसको किसी को बताना। बताना इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारी प्रैक्टिस भी रहेगी और दूसरों तक बात शेयर भी करोगे। ये स्वाध्याय और प्रवचन, इसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। लाइफ लॉन्ग कभी नहीं समझना कि तू सब जान गया, उसमें कभी भी कोई ब्रेक नहीं लाना। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि वो हेल्प करता है, सिर्फ मेरी एग्जिस्टेंस के लिए, मेरी सस्टेंशन के लिए नहीं, समाज के लिए। जिस समाज में जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, उतना समाज अच्छा बनेगा, सुंदर बनता है, खूबसूरत बनता है। देखिए जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों की परसेंटेज देखिए। भारत को देखिए, जब हम 40-50 साल पहले जब पढ़े लिखे लोग 8-10-15% होते थे, 50-60 साल पहले, तो क्या भारत की स्थिति थी? आज हम 40-45% करीब पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज भारत की स्थिति उससे हजार गुना बेटर है, लाखों गुना बेटर है। हो सकता है कि आगे 25-30 साल में जब 100% लिटरेसी हो, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़े, तो भारत की छवि कुछ दूसरी होगी। पढ़ना लिखना आपको सुख शांति और आपकी जीवन को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, इसीलिए वो भी एक धर्म है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्य बोलना। 24 घंटे घर में सच बोल के देखिएगा। फैमिली में चार मेंबर हो, चारों मेंबर आप प्रॉमिस करें कि आज हम 24 घंटे के लिए व्रत लेते हैं, जैसे आप व्रत रखते हो कि आज हम झूठ का व्रत रखेंगे। 24 घंटे शायद जाएगा नहीं, 10-15 घंटे के अंदर आपके घर में बर्बादी शुरू हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते आपके घर में क्या क्या बर्बादियां होंगी जब चारों मेंबर कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक हमेशा झूठ बोलेंगे सिर्फ 24 घंटे के लिए। पर आप 24 साल तक सच बोल के रह सकते हैं। शुरू शुरू में एक दो दिन थोड़ी बहुत मुश्किलें होंगी, उसके बाद आदत पड़ जाए। अक्रोध, गुस्सा ना करना, सिंपल चीज है, पर यह धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। क्यों? क्योंकि धर्म उसको कहते हैं जो सस्टेन करता है, और गुस्सा किसको सस्टेन करता है? हमारे यहां शास्त्रों में श्लोक आता है, क्रोध एव मनुष्याणाम महान रिपु। अगर कोई इंसान का सबसे बड़ा खुद का दुश्मन है, खुद का अपना शत्रु है, वो अपना गुस्सा है। गुस्से से आप दूसरों को नुकसान तो पहुंचाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाते हैं। पूरी आपकी मेंटल सिस्टम को आप गड़बड़ा देते हैं, कितने घंटों के लिए, कितने दिनों के लिए, जब आपको गुस्सा आता है। क्रोध दशकम धर्म लक्षण, तो मनु कहते हैं कि ये 10 धर्म के प्रिंसिपल्स है। बृहदारण्यक उपनिषद एक इंटरेस्टिंग बात कहता है, कभी आप इंडियन पार्लियामेंट जाएंगे तो जब अंदर प्रवेश करेंगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको, नसा सभा यत्र नसंति वृद्धा नते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। ध्यान दीजिए, वो सभा, वो असेंबली, असेंबली नहीं है, जिसमें वृद्ध लोग ना बैठे हो, वृद्ध मीन्स मैच्योर, बुजुर्ग लोग ना बैठे हो, वो वृद्ध, वो मैच्योर या बुजुर्ग, बुजुर्ग नहीं है जो धर्म नहीं बोलता, पर वो धर्म धर्म नहीं है जो सत्य नहीं है, सच नहीं है, और वो सच सच नहीं है जो दूसरों को चुभने के लिए बोला जाता हो। ये इंडियन पार्लियामेंट में एंट्री जब करेंगे आपको दिखाई देगा, मेन हॉल पर, मेन हॉल लोकसभा। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है यो वै स धर्म सत्यम वै तत् तस्मात् सत्यम वदन्तमाहुर्धर्मम् वदत्तीति धर्मम् वा वदन्तम् सत्यम् वदति एतद्धेवेतदुभयम् भवति। वैसे कहता है कि जो धर्म है वही सच है। सच का संस्कृत में जो सच का शब्द है वो है सत्यम, और सत्य की जो लिटरेरी मीनिंग है वो है एग्जिस्टेंस। आप जब कहते हैं ना कि सच बोलो, बस सच बोलता है, उसका मतलब क्या है? जो एग्जिस्ट करता है, किया था, करेगा, उसी को आप बोलते हैं। आप किसी इंसिडेंट के बारे में बोलते हैं, वो इंसिडेंट अगर हुआ है, एग्जिस्ट किया था, अब आप उसी को बोलते हैं तो आप सच बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ था, नहीं है, तो भी आप बोलते हैं तो आप झूठ बोलते हैं। सत्य और कुछ नहीं, जो एग्जिस्ट करता है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स इट। इसीलिए कहा कि क्योंकि धर्म का मतलब भी वही है, उस एग्जिस्टेंस को सस्टेन करना। इसलिए कहा जो सच है वही धर्म है, और जो धर्म है वही सच है। इसीलिए प्राचीन काल में जो सत्य बोलता था लोग कहते ये धर्म बोलता है, और जो धर्म की बात बोलता था लोग कहते थे ये सत्य बोलता है। आज भी गांव में रूरल एरिया में जाएंगे, कोई अच्छा काम करता है, अच्छी बातें बोलता है, लोग कहते हैं कि ये धर्म बोलता है। इसीलिए आपकी इंडियन पार्लियामेंट में ये लिखा हुआ होता है कि वो असेंबली असेंबली है जिसमें बुजुर्ग बैठते हैं, वो बुजुर्ग बुजुर्ग है जो धर्म बोलते हैं, और वो धर्म धर्म है जो सत्य है। पर ये जो धर्म हमने बताया ये दो तरह के है। एक को हम कहते हैं सामान्य धर्म, वो जनरल धर्म या यूनिवर्सल धर्म, दूसरा है विशेष या स्पेसिफिक या पर्सनल धर्म। जनरल धर्म क्या है कि वो कंडक्ट, वो बिहेवियर जिसको पालन करने के लिए कोई किसी भी देश का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सिस्टम का हो, किसी भी एज का हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, या किसी भी जेंडर का हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी टाइम हो, टाइमलेस, सिचुएशनलेस, प्लेसलेस, हर परिस्थिति में उनको करना चाहिए। जैसे मनु के दस धर्म के दस लक्षण आपने सुना। ऐसा नहीं है कि सत्य बोलना, गुस्सा ना करना, पढ़ाई करना, अपने इंटेलेक्ट को नर्चर करना, क्षमा करना, जो करेगा वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, या वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो अफ्रीकन है, वो यूरोपियन है, वो जापानीज है, क्या वो मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बुजुर्गों को करना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए, जवानों को नहीं, सबके लिए ये कॉमन रूल है। शाम को नहीं बोलना चाहिए, सुबह बोलना चाहिए, जैसे लोग बोलते मंदिर है, मंदिर में मैं झूठ नहीं बोलता, मंदिर में झूठ मत बोलो, मतलब पूरी दुनिया में झूठ बोलो, बस मंदिर के अंदर मत बोलो, पाखंडी है, हिपोक्रेसी है। कम से कम मंदिर में तो ऐसा मत करो। क्यों भाई? प्रोमोट्स हिपोक्रेसी। मतलब पूरी लाइफ में आपने एक दो एकड़ की, तीन एकड़ की जमीन के अंदर ही सारा पुण्य करना है, बाकी धरती के बाहर सब जितना कुछ करना है करो। इसीलिए हमारे शास्त्र कहा नहीं, ये जो रूल्स आपको बताए ये यूनिवर्सियल है, कोई स्थान, काल, पात्र, उम्र कुछ नहीं देखा जाना चाहिए, ये सबको हर परिस्थिति में करना चाहिए। जो जितना ज्यादा करे उतना धर्म के नजदीक है, जितना कम करे वो उतना धर्म से दूर है, अधर्म है। पर दूसरा विशेष धर्म है वो चेंज होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट है, वो टाइम टू टाइम भी डिफरेंट है। जैसे एक व्यक्ति अपने ही घर में अपने बच्चों के लिए पापा है, पिता है, बच्चों के प्रति उसका जो बिहेवियर होगा वो पितृधर्म है, वो फादर्स धर्म है। वो जो फादर वाला धर्म उसका है वो धर्म अपने वो बाप के सामने नहीं दिख कर सकता, वो फिर अधर्म होगा। वो अपनी पत्नी के साथ वैसा बिहेवियर नहीं कर सकता जो अपने बच्चों के साथ करता है, वो ऑफिस में वो बिहेवियर नहीं कर सकता। तो एक व्यक्ति जब बच्चों के सामने है एज ए फादर, उसका धर्म दूसरा है। एज ए सन और डॉटर उसका धर्म दूसरा है। जब वो अपने ऑफिस में होता है उसका धर्म दूसरा होता है, जब वो सोसाइटी में होता है उसका धर्म दूसरा है, जब रोड पर गाड़ी चलाता है तो उसका धर्म दूसरा है, वहां ड्राइवर का धर्म है। अगर आप आर्मी में हैं आपका धर्म दूसरा है, अगर आप सन्यासी हैं आपका धर्म बिल्कुल उल्टा है। वो धर्म का इंटरचेंज नहीं हो सकता, वो बहुत बड़ा अधर्म को पैदा करता है। सन्यासी को 100% सामाजिकता से दूर रहने की जरूरत है, सोशल नॉर्म से वो ऊपर उठने की उसको जरूरत है। उसको ये केयर करने की जरूरत नहीं है कि कौन बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, उसको सत्य बोलना है, उसको 100% अहिंसक होना है, उसको 100% क्षमावादी होना है। वो किसी भी परिस्थिति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तभी तो वह सन्यासी बन। पर अगर कोई राजा, कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई रूलर, कोई जज, पुलिस ऑफिसर अपने प्रोफेशनल लाइफ में सन्यासी जैसा बिहेव करने लगे तो पूरा का पूरा देश तो बर्बाद हो जाएगा। सब अच्छे हैं, सब भगवान के संतान है, जी इसने चोरी किया, 15 लोगों को काटा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, सब क्षमा करो। तो क्या होगा देश का? नहीं, हर इंडिविजुअल का वो जिस पोजीशन पर है, जिस प्रोफेशन पर है, जिस सोशल ड्यूटी को निभा रहा है, जो भी उसके इंडिविजुअलिटी का जो अलग अलग प्लेस टाइम सर्कमस्टांसेस में उसकी ड्यूटीज अलग अलग हैं, उसको हम कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म इंडिविजुअल धर्म, और वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, मैं दुनिया के हर व्यक्ति के साथ पापा की तरह बिहेव नहीं कर सकता ना। बहुत सारे लोग तो डंडा पिटेंगे, डंडा में मारने दो रहे हैं। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए पापा जैसा बिहेव कर सकता हूं, तो पत्नी भी डंडा उठा के मारने लगेगी अगर उसके पापा जैसा मैं बिहेव करने लग जाऊं उसके साथ, नहीं हो सकता है ना। तो आपका वो बदलते वो बदलने वाला धर्म है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में हो। और कृष्ण बहुत वार्निंग के साथ बोलते हैं गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अगर दूसरे का इंडिविजुअल धर्म आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ज्यादा ल्यूरेटिव लगता है, तो भी अपने धर्म को मत छोड़ो। दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा लगे वो तुम्हारे लिए भयावह है, बर्बादी करने वाला है। एक बिजनेसमैन को लगे कि भाई कि प्रोफेसर लोग बड़े अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, ज्यादा काम फाम करते नहीं है, पता नहीं क्या जाते हैं, कुछ बोलवाल के आ जाते हैं, इनको बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है, दुनिया भर घूमते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा। अब क्या होगा, तो क्या पढ़ाएगा वो, जो पढ़ाएगा, जिनको पढ़ाएगा उनकी क्या हालत होगी? और क्योंकि जिनको पढ़ाएगा उनकी भी बर्बादी पक्का है, और खुद जो बिजनेस में कुछ जो कुछ अच्छा करता था वो भी बर्बाद हुआ, खुद भी बर्बाद, दूसरा भी बर्बाद। कोई टीचर को लगे कि बिजनेस में बहुत पैसा है, मुझे तो बिजनेस करना है। हमने एक जोक सुना था, एक टीचर को पूछा, बोला जो बाय नेचर टीचर है, आजकल तो लोग मजबूरी में भारत में बहुत कुछ कर लेते हैं, कि अगर हम आपको कंपनी में आपको डायरेक्टर बना दें तो आप क्या करोगे, क्या ऐसा करोगे कि कंपनी में बढ़ोतरी हो, बढ़े? मतलब ऐसा करूंगा, कंपनी का जो काम करूंगा उसके अलावा ट्यूशन करूंगा। टीचर टीचर है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा तो ट्यूशन करेगा, और क्या करेगा। इसीलिए कहा, सन्यासी अगर पॉलिटिक्स में चला जाए तो बर्बाद है, सन्यासी भी बर्बाद है, समाज भी। फिर समाज कहां से जाएगा स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म ज्ञान के लिए, क्योंकि आपका सन्यासी तो नेता बन रहा है, और नेता सन्यासी जैसा बिहेव करने लगे, चोर, डाकू, शैतान, बदमाश सब खुले घूमेंगे, क्योंकि हमारा राजा तो सन्यासी है, सबको माफ, सब अच्छा है? समझ सकते हैं क्या बुरी हालत है। इसीलिए श्री कृष्ण वार्निंग के साथ बोलते हैं, परधर्मो भयावह, जो धर्म को नहीं समझते वो ट्रांसलेशन कर बैठेंगे, धर्म मतलब रिलीजियन, आप जिस रिलीजियन में हो वो अच्छा है, दूसरा खराब है, नहीं, आपकी अपनी जिस पोजीशन में आप हैं उसमें रहते हुए जो कुछ करते हैं वो आपका धर्म है। इवन एक सेंचुरी में जो धर्म था हो सकता है दूसरे सेंचुरी में वो पाप माना जाए। महाभारत काल में एक सिस्टम था, नियोग व्यवस्था, जैसे पति लोग, पुरुष लोग, अगर उनकी पत्नी बच्चा पैदा करने के लायक नहीं होती है या और किसी कारण से नहीं होती है तो पुरुष दूसरी शादियां कर लेते हैं। शादियां नहीं भी करते तो बच्चे के लिए दूसरी पत्नी के साथ संबंध रखते हैं। और आज भी दुनिया में लीगली हो, इलीगल हो ना हो, पर लोगों के माइंड में कोई बुरी बात इसको नहीं मानते। पर क्योंकि हमारा प्राचीन समाज ज्यादा डेवलप्ड था, ज्यादा इक्वल था, तो वहां सिस्टम था इसी तरह का कि अगर किसी महिला का पति बच्चा पैदा करने लायक नहीं है तो पत्नी को भी अधिकार था वो किसी अपने फैमिली में डिस्कस करके किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाए और उसे संतान पैदा प्राप्त करे। इसे कहते थे नियोग व्यवस्था। अब कि महाभारत के ज्यादातर कैरेक्टर ऐसे ही हैं, वो पांडव हो, कौरव हो, सब ऐसे ही पैदा हो, उसको कहते हैं नियोग। ऐसा नहीं कि महाभारत काल में था, ये भारत में हजार हजार साल तक रहा, धर्मशास्त्र इसको मान्यता देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इसको कोई कभी बुरा नजर में नहीं देखता था। पर सोसाइटी चेंज हुई, वी आर मोर हिपोक्रेट देन आवर एंसेस्टर्स, क्योंकि हम हिपोक्रेट ज्यादा बन गए, अब इस चीज को ज्यादा बुरा माना जाता है। पत्नी करेगी ऐसा, ओ प्रोस्टिट्यूट बन गए, पति करे तो वो तो मैचो मैन होता है, बुरी नजर से देखा जाता है। पर उन दिनों ये धर्म था, कोई बुरा नहीं मानता था। पर आज आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आज ये पाप माना जाता है। तो आपको कभी कभी समाज के हिसाब से प्राचीन काल में हम लकड़ियों से शवों को जलाते थे, अंत्येष्टि संस्कार अब भी करते हैं गांव में, डेड बॉडी को जलाते थे। परिस्थिति बदली, इकोलॉजी पूरी की तरह पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, अब जंगल कम है, पेड़ पौधे मिलते नहीं है, अब पेड़ काटना बड़ा पाप माना जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ वैसे ही कम हो गए, और आप किसी भी कारण से पेड़ काटते हो तो आप एक तरह के इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाते हो। तो अब ट्रेंड चला, भारत में भी अब काफी तेज गति से चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल होम्स होते हैं कि आपको कुछ करना नहीं, इलेक्ट्रिक चूल्हा में डालना है, लकड़ी नहीं जलेगी। वो आज का धर्म है, उन दिनों की परिस्थिति अलग थी। आप ये नहीं आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि नहीं लकड़ी में जलाने से ही बाप मेरा अच्छा जलेगा, वो इलेक्ट्रिक चूल्हे में कम पुण्य पुण्य होगा, नहीं बकवास। उन दिनों परिस्थितियां अलग थी, हमारे पास इलेक्ट्रिकल चूल्हे की कंसेप्ट नहीं था, आज है। उन दिनों जंगलों की कमी नहीं थी, आज कमी है। ये जो हर जो धर्म आज धर्म है कल वह अधर्म होता है। आज लकड़ियों को जलाना अधर्म है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लाइमेट खराब हो चुका है, इकोलॉजी बिगड़ चुकी है। और एक धर्म का अंग है, इसको हम कहते हैं, एक आपने देखा सामान्य धर्म जो यूनिवर्सियल है, एक विशेष धर्म जो इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक है। जैसे आप पापा के रूप में आपका धर्म अलग है, बेटे के रूप में अलग है, दोस्त के रूप में अलग है, ऑफिसर के रूप में अलग है, सबोर्डिनेट के रूप में अलग है, बॉस के रूप में अलग है, वॉलंटियर के रूप में अलग है। एक तीसरी कैटेगरी का धर्म होता है, इसको हम कहते हैं आपद धर्म। आपद धर्म मतलब धर्म इन डिस्ट्रेस। जब ऐसी परिस्थितियां हो, मान लीजिए आप टाइटैनिक में जा रहे हो, अटलांटिक में फंसे, आपके जहाज डूबा, आप समुन्द्र में, अटलांटिक के ठंड वाले समुन्द्र में आप फंसे हो, जिंदा हो, 15 दिन तक कोई लेने नहीं आया, तब भी आप कैसे कैसे बचे हो, खाने पीने को कुछ नहीं, क्या करोगे? आप बड़े वेजिटेरियन हो, जो मिला खा गए। अभी एक न्यूज आया था, कोई अटलांटिक में कोई जहाज डूब गया, तो वो अपनी मेमोरी लिखा था मेमोरी में, तो 7-8 दिन तक वो 4-5 लोग जिंदा थे, बाकी सब उनके 25-50-60 लोग मर गए थे। बहुत ठंड था, खाने पीने को कुछ नहीं, वेट कर रहे हैं कभी कोई उठाने के लिए आए, तो जब भूख अब संभाला नहीं गया 5-7 दिन के बाद, तो उनके दोस्तों की जो डेड बॉडी थी, वो जो फ्रोजन वाटर में, सड़े तो नहीं थे, तो उन्होंने उसको खाने लगे जिंदा रहने के लिए। अब आप क्या कहोगे? तो पाप है कि पुण्य है? ये आपद धर्म है। जब आप डिस्ट्रेस में हो, जब ऐसी परिस्थिति में हो जहां सर्वाइव करना जरूरी है, तो आप उस नॉर्मल धर्म से अलग चले जाते हो, पर वो आपके रेगुलर लाइफ की पार्ट नहीं हो सकता। ऐसे हमारे जीवन में ऐसे कितनी समस्याएं आती हैं जहां हमें अपने रेगुलर लाइफ से हटके सोचना पड़ता है, उसे हम आपद धर्म कहते हैं। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है बुरा है, हम कहां से जाने? धर्मशास्त्र कहते हैं, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः। चार चीजें धर्म के पिलर है, जिसको अगर हमें कभी समझ ना हो क्या धर्म है अधर्म है, कहा कि वेद पढ़ो, वेद में जो लिखा है, जो वेद की बातें वो सच है। अगर वेद तुम्हें, तुम्हारा आंसर वेद में नहीं मिलता, तो धर्म शास्त्रों को पढ़ो। अगर धर्म शास्त्रों में आंसर नहीं मिलता तो तुम्हारे आसपास जो लोग हैं विथ प्योर सोल, जो शुद्ध आत्मा वाले पवित्र आत्मा वाले लोग हैं, जिन या जो नहीं भी हैं, जिनकी बायोग्राफी आपके पास है, जीवनी, जो महात्मा थे, महान लोग से संत थे, जिन्होंने आपको लगता है जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, उनकी जीवनी को पढ़ो। उनका जो सदाचरण है, जो गुड कंडक्ट है, उस डिस्ट्रेस में, गलत परिस्थिति में, डिलेमा में उन्होंने क्या डिसीजन लिया था, वो डिसीजन लो, वो तुम्हें धर्म समझाएगा। अगर वो भी तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास फोर्थ ऑप्शन है, स्वस्य च प्रियमात्मना, अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो सबसे स्ट्रांग होता है। पर प्रॉब्लम है कि हमें वो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा अपने ऊपर कवर डाल रखे हैं कि हमारी अपनी आवाज हमें सुनाई नहीं देता है, अपनी इनर वॉइस। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ध्यान दीजिएगा, बाय नेचर हमसे हो गया कोई अच्छा काम, बिना सोचे समझे मतलब कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं, बिना सोचे समझे आपसे कुछ अच्छा काम हो गया, उसके बाद जो आपकी फीलिंग होती है, वो जो एक अलग अजीब तरह की आपको खुशी मिलती है, जो अजीब तरह की लाइटनेस आप फील करते हैं, वो आपके अंदर की आवाज है। जब भी आपसे कोई बुरा काम होता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, आपके अंदर से एक अजीब सी हैवीनेस आता है, पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है, एक बुरा सा लगता है। आपने किसी से बात की, थोड़ा आपने कड़वा बोल दिया, गुस्से में ज्यादा बोल गए, आपको लगा कि ये गलत था, आप खुद आपको बेचैनी होती, उस आदमी को कितना बेचैनी हुआ पता नहीं, आपको खुद बेचैनी हुई। शास्त्र कहते हैं वो आपके अपने अंदर की आवाज है, वो हर व्यक्ति के अंदर है, बड़े से बड़े बदमाश व्यक्ति के अंदर भी है, पर समस्या सिर्फ है हम उसको दबाते जाते हैं अपनी सेल्फिश यूज के लिए, और इतना उसको सप्रेस कर देते हैं, अब तो पता ही नहीं चलता, अब तो हजारों कत्ल करने के बाद हाथ जोड़ के चाय पी करके बैठ जाता हूं, समझ में नहीं आता कुछ सवाल। पर आम आदमी ऐसा नहीं है, आप एहसास कर सकते हैं कि ये धर्म है कि अधर्म है, वो आपके अंदर की आवाज आपको बोलेगा जब आप डिलेमा में हो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कंक्लूजन में कि अगर तुम धर्म को पालते हो तो धर्म तुम्हें बचाता है, अगर तुम धर्म को मारते हो, धर्म को मारना मतलब धर्म का पालन न करना, तो मरा हुआ धर्म तुम्हें भी मारता है। अगर धर्म को बचाते हो, बचाते मीन्स धर्म का पालन करना, बचा हुआ धर्म तुम्हें भी बचाता है। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, 16th सेंचुरी से हमारे यहां मॉडर्न साइंस आने लगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगे, इंसान की सुख सुविधा के लिए हजार हजार तरह की चीजें बनने लगे, और हमने नेचर को इतना एक्सप्लोइट किया विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। अब 400 साल के अंदर मरा हुआ धर्म आपको भी मारता है। अब इस धरती की हालत ऐसी है कि वैसे ही हजार बीमारियां लेकर हम घूमते हैं, कैंसर से लेकर के क्या क्या बीमारियां, इसका कुछ पता ही नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, और आगे 100-200 साल के बाद क्या हालत होगी। हमारे बच्चों के लिए पानी भी, अब तो भारत में बहुत सारे राज्यों में पानी के लिए भी मारकाट शुरू हो चुका है। कल्पना करिए 100 साल के बाद क्या होगा इस धरती में, कितने देशों में पानी के लिए लड़ाइयां होगी, कितने देशों में गाड़ी पार्क करने के लिए दिल्ली में महीनों में कितने लोग, सैकड़ों लोग मार काट करते हैं, हत्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, जेल में जाते हैं गाड़ी पार्किंग करने के लिए। कल्पना करिए 100 साल के बाद, 500 साल में इस धरती हमें मारने के लिए दौड़ेगी। अभी तो 400 साल। क्यों? मरा हुआ धर्म मारता है। इंसान अपने धर्म को नहीं समझा। धर्म का मतलब ऐसा व्यवहार जो सस्टेन करे। हमने बर्बादी वाला धर्म चुना और उसका रिजल्ट आज नहीं कल आया। इसीलिए कहा, मरा हुआ धर्म मारता है, बचा हुआ धर्म भी आपको बचाता है। अगर आप अपने धर्म को पालोगे तो धर्म आपको भी पालेगा। सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास लोगों को भी पाल लेता है, आपकी पूरी इकोलॉजी को पाल लेता है। महर्षि व्यास एक सुंदर बात महाभारत में कंक्लूडिंग श्लोक के रूप में बोलते हैं, सिंपल भाषा में आम लोगों के लिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। तुम्हें अगर कुछ नहीं समझ में आया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो सिंपल भाषा में इतनी है, जो तुम्हारे लिए बुरा है वो दूसरों के लिए भी बुरा है। तुम्हें जो बुरा लगता है वही चीजें जब दूसरों पर करोगे तो वो अधर्म है, और जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है जो तो दूसरों के लिए करोगे वो धर्म है। मेरे लिए क्या अच्छा लगता है कि मुझे कोई गालियां ना दे, मुझे कोई मिसबिहेव ना करे, मेरे साथ कोई क्राइम ना करे, मेरे ऊपर कोई, मुझे कोई मारने की कोशिश ना करे, मेरा मांस कोई ना खाए, मुझे कोई लूटे नहीं, मेरे के साथ कोई खराब व्यवहार ना करे, ये अच्छा लगता है। मैं दूसरों के साथ ऐसा ही करूं, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरे से प्यार से बातचीत करें, मुझे रेस्पेक्ट करें, मैं दूसरों के साथ भी ऐसा ही करूं, ये धर्म है। सिंपल, जो मुझे अच्छा लगता है अपने लिए तो दूसरों को भी वही अच्छा लगता है। ऐसा ही दूसरों के साथ करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो भी आप धर्म कर जाओगे, अगर नहीं तो फिर हम अधर्म करते हैं। देवियों सज्जनों, धर्म व्यवहार का विषय हमने दो दिन में चर्चा में जानी। इट्स अबाउट आवर ओन कंडक्ट, देयर इज नथिंग विथ गॉड और सोसाइटी और समथिंग। मेरा व्यवहार कैसा हो वो धर्म है। पर जब धर्म को हमने मंदिर के अंदर रख दिया, पूजा घर के अंदर, वो मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, कुछ भी, कि भाई यही धर्म है, और मेरे घर के पूजा घर के अंदर रख दिया, तो पाप बढ़ने लगा। धर्म तो मार्केट में होना चाहिए था, स्कूल में होना चाहिए था, कॉलेज में होना चाहिए था, रोड में होना चाहिए था, बस में होना चाहिए था, ट्राम में होना चाहिए था, ऑफिस में होना चाहिए था, पर वहां हमने धर्म को छोड़ दिया। हमने कहा सब मंदिर में होगा। हवन किया जी, धर्म किया मैंने, हवन के बाद बाहर जाकर चार गालियां दी, वो तो कोई बात। धर्म को मार्केट में होना चाहिए था, मंदिर में नहीं। मंदिर से तो मैसेज जाता है, पर हमने मंदिर के चारों दीवार के अंदर धर्म को रखा और पूरी मार्केट बाहर हमने अधर्म को प्रश्रय दिया। रिजल्ट क्या हुआ? मंदिर तो कोई अलग जगह पर नहीं है ना, स्वर्ग में नहीं है ना, वही है जहां हम रहते हैं, तो मंदिर भी मार्केट बन गया। तो मंदिर में ज्यादा पाप दिखने लगे। क्यों? हम ये बताने भूल गए, ये मानने भूल गए कि धर्म व्यवहार का विषय है, सिर्फ पूजा पाठ का विषय नहीं। पूजा पाठ भी धर्म का अंग है। ईश्वर को मानना, उसके प्रति भक्ति करना, सबसे पार्ट ऑफ धर्म। और जब हमने सिर्फ पूजा पाठ को ही सारे पाप छुड़ाने का पुण्य कमाने का सहारा मान लिया तो हमारा पूरा कैरेक्टर एक अलग तरीके का हो गया। जब तक जीवन में धर्म ना उतरे तब तक मंदिर कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए धर्म के नाम पर फैनेटिज्म बढ़ती है, रिजिडिटी बढ़ती है, एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, गालियां देते हैं। धर्म का नाम सुनते ही लोगों का खून उबलता है मारने पिटने की। माई फेथ, धर्म फेथ नहीं है, धर्म तो एक्शन है। फेथ तो फैनेटिज्म पैदा करता है जिसको आप रिलीजन कहते हो, धर्म रिलीजन नहीं है, तो इट्स योर कंडक्ट है। देवी सज्जनों, तो स्वामी दयानंद जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला में तो धर्म का जो लक्षण किया उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे फिर स्वामी जी के एक अलग विषय को लेकर हम अगली बार फिर आएंगे। इसी के साथ विराम करते हैं। ओम शांति।